ज्ञानंजनशलाक्य चक्षुरुन्मीलितमिति तस्मै श्रीगुरवे पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाप्रसन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त सप्तकाञ्चन गौरङ्गीरा देवीन्द्रांशे हृदयाद्वाच अंगश्यामलिं चटातिरभितो मन्देकपिण्डीवर जटञ्जाकुलरोचि सन्धिगणितं पट्टम्बरस्य श्रिय वृन्दारण्यनिवासिनं वृन्दिनशद्दामाभिरामोक राधाशन्देशितो जलभुजं ध्याये भक्त्या विघ्नापराधलक्षये चित्ताश्चिकामादितरं कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदवक्ताय यं प्रकृजन्तमचेतमपेत Gostei suave dele, tem uma puta escuroça. Vaishnava, a Vaishnava está a prática toda. Prática deste ser não é tão grande. Prática deste ser Vaishnava por dar sim para a gente. Nunca prati a prática toda. हम लोग को थोड़ा सा इस विषय में सावधान रहना चाहिए। अधिकांश हम लोगों में यही बातें हो जाती हैं। हम लोग प्राकृतिक दृष्टि से उनको देखते हैं, जैसे उनके स्वाभाविक रूप स्वभाव में अथवा शरीर में कोई भी दोष हो तो प्राकृतिक मत समझो। गंगा में जैसे हिम और पंख होते हैं उनको फिर भी वो ब्रह्म व्रत है, सीमा है, उस प्रकार से वैष्णव में ऐसा देखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा पपिचेस्तु दुराचारो भजते माम अनन्यवा साधुरे व सन्तब्ध सम्मको। यदि अनंत कोई भजन करने वाला है उसमें छेद यदि कदाचित कभी सुदुराचार भी देखा जाए तो उसे शादी न, उसकी निंदा मत करो, उसके आचरण मत ग्रहण करो, उसे संग मत करो, किंतु कभी भी खबरदार नहीं करो। क्यों? इसके बाद ही बताया गया है क्षिप्रम भव निधार मात्मा स्वस्वच्छान्ति निगच्छति कौन्ते प्रतिज्ञानी न मे भक्ता करिष्यति। हमारे भक्तों का विनाश नहीं है। दुराचारत्व दिखने पर भी उनमें ऐसा समझना चाहिए कि ये बहुत जल्दी ही फिर स्वभाव उसका ठीक हो जाए, इसलिए निंदा मत करो किंतु संग भी मत करो। यही हमारे आचार्य ने बताया, क्योंकि उसकी बुद्धि सम्यक सम्यक व्यवस्थित, उसका व्यवसाय सम्मत है। क्यों? भजते माम अनन्य भाव, ये उसका व्यवसाय है। यदि कोई अनन्य रूप से भजन कर रहा है पूर्व जन्म के संस्कार से या इस जन्म के किसी कारण से, यदि हठात कर ऐसा कुछ देखा जाए दुराचार, कभी तुम मत उसमें पड़ो, उसके निंदा मत करो, उससे दूर रहो और अपना भजन करो। आते हैं तो उनका जैसा सम्मान है वैसा सम्मान ही करो। कुछ लोग ब्राह्मण आदि उच्च कुल में जन्म लेने से सिद्ध भक्तों के आचार विचार को समझ नहीं पाते, अतः उसकी नाना प्रकार से अवज्ञा, इससे वे लोग वैष्णव अपराधी हो पड़ते हैं। इस विषय में साधकों को सावधान रहना चाहिए, विशेष करके हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। कृष्ण नाम भजन की कैसी प्रणाली है, कैसे करना चाहिए, इसके लिए बतला रहे हैं। रूप गोस्वामी श्या कृष्णाम चरितादि सीता विद्या पितो तत्न रोचिका किं त्वादराद अनुदिनम खलु शैव दुष्टा स्वाद्य क्रमाद भवती तद्वदन मंत्री। कृष्णाम करते करते किंतु रुचि नहीं हो रही है, क्या करना होगा, रुचि नहीं होगी, हर नाम लेकर के और बहुत चिंताएं आ जाती, बैठ करके नाम नहीं कर सकता, फिर टहलने लगते हैं, टहलने सके फिर दूसरों साथ के बात करते हैं। नहीं, कुछ समय ऐसा निकाल करके रखना चाहिए कि हम नियमित रूप में शुद्ध अंतर से, अभी नहीं होता है तो भी चेष्टा करनी चाहिए। यह अनर्थ के वजह से हो रहा है, अपराध और अनर्थ दोनों के कारण, इसलिए उसका दूसरा कोई दूसरा उपाय भी नहीं जिसको दूर किया, निरंतर कृष्ण नाम करने से ही यह रोग दूर होगा, अपराध होगा। जिस प्रकार से कमला रोग के लिए उसकी औषधि मिश्री है, कमला रोग हो जाने पर, पीलिया रोग हो जाने पर मिश्री भी उसको कड़वी लगती है, किंतु कड़वी लगने पर भी उसी का सेवन करते 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 कुछ दिन के बाद में मीठी लग जाएगी, तो जब मीठी लग जाएगी समझिए जैसे रोग दूर होगा। उसी प्रकार से हरिनाम करते 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 पहले अच्छा नहीं लगता है तो भी करें। कुछ लोगों को सेवा में खूब देखते हैं, खूब सेवा लग गए, परिक्रमा में खूब जोर तो में खूब उछल कूद करके खूब नृत्य करते हैं, किंतु एक मिनट हरि कथा हो या हरिनाम हो तो उसमें सुन जाए अवश्य हो जाए, क्योंकि कर्मी है। वैष्णव लोगों को भी इसमें परिक्रमा इत्यादि में बस रुचि और प्रीति के साथ में करते हैं, किंतु उन लोगों को इधर में रुचि नहीं, नाम में रुचि नहीं, हरि कथा में विशेष करके रुचि नहीं, नाम तो दिखलाने के लिए नाम तो किया जा सकता, किंतु मन को एकाग्र करके निष्ठा के सहित में जैसा रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा करना बड़ा कठिन है। दिन रात परिश्रम करके करेंगे सब, किंतु उधर में रुचि, इसलिए इन लोगों के लिए हम लोगों के लिए उचित है निरंतर कृष्ण। किंतु कृष्ण नाम करने से पहले भाई श्रवण करना, और जो नमस्कृत व्यक्ति है उनकी सेवा करना, नहीं सेवा करने से उनकी बात नहीं सुनने से उच्छृंखल होने से वो जो नाम हो रहा है वो ही नहीं होगा, धीरे धीरे सभी कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए किंतु अगर आप अनुदिनन खलु शैव दुष्टा, किंतु आदर के साथ में प्रीति के साथ में चित्त को एकाग्र करते कुछ समय एकांत में रह करते वैष्णवों के अनुगत्य में अनुशासन में रहते, तो वही स्वयं खलु जुष्टा, इस प्रकार से करते 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 या स्वाधन करते करते नाम कुछ दिनों के बाद में उपाधि भव क्रमा क्रम से वो अच्छा लगने लगेगा और तदगत मूल तद गद मूलहन से गद मैंने क्या है रोग अवध मैंने निरोग होता है गद क्या है अनर्थ इसलिए वो अच्छा नहीं लग रहा है रुचि नहीं हो रही है वो जो नाम जो कहेंगे प्रति के शरीर तो तद गद मूल हंत्री मूल से उसको हंत्री नष्ट कर देता है क्या वो हरिना अनुदिन दिन रात का तो कुछ लोग अर्चन करते हैं अर्चन में इधर उधर दौड़ करके फूल लाना ये करना वो करना चंदन भीषना उसके लिए सब चीजें ले आना सब कर लेना रसोई भी अर्चन किंतु थोड़ा सा बैठ करके हरिकथा सुनते ही हुई यार जैसे हरिनाम करेंगे बैठ करके एकाग्र चित्र से वो होगा इसलिए आदर पूर्वक जैसा रूप गोस्वामी ने कहा है जैसे रघुनाथ गोस्वामी इत्यादि ने आचरण किया है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आचरण किया है और औसत आचार्य लोग हैं ठीक वैसे भी इसके अंदर में जो जो बाधा है उनको हटाते चला जाए जो जो बाधा है नथ युक्त अवस्था में साधनों का चित्त चंचल रहता है किस लिए चंचल मान लेते कि हम लोग एक नया मठ करें तो चित्त चंचल होगा कि नहीं होगा तो हरिनाम करने का समय उसमें चला जाए और वैसे समर्थ व्यक्ति ही जिनके हाथ आने से ही हो जाता है तो वो कोई बात वो प्रचार के लिए अपने सामर्थ्य से अधिक नहीं जाना नहीं तो जो भजन करने का समय है उधर घर में चला जाएगा और कुछ लाभ कुछ दिन पहले तक हम लोग जो सोचते थे ये भजन का अनुकूल है हम देखते हैं कि वो सब भजन के तो प्रतिकूल होता जाए उसको छोड़ता जाए छोटे 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 एकांतिक रूप में हरिकथा श्रवण और नमस् नाम है सब कुछ कुछ लोगों का ऐसा जैसा ऐसा था एक आदमी श्रवण ही नहीं करे और नाम करे तो हो जाएगा 3 लाख नाम करे 10 लाख नाम करे होगा नहीं होगा या तो मायावादी में जाएगा ना कर्मी जाएगा ना भोग में चला जाएगा इसलिए निरंतर हरिनाम करना चाहिए देखो कितनी रुचि है पाठ में कीर्तन में कितनी है सब आज सुन रहे हैं हम लोग सो रहे हैं इसलिए अनर्थ युक्त अवस्था में साधकों का चित्त चंचल रहता है बहुत से कारण बहुत से कारण इसलिए चित्त चंचल रहता है सारी उनकी रुचि नहीं होती है तथापि नाम आदि श्री हरि नाम करने तनिक शिथिलता नहीं करनी चाहिए नहीं आता जोर जोर से करना चाहिए जैसे तैसे करना चाहिए श्री कृष्ण के प्रति अनादि विमुखता ही अविद्या है वही पित्त स्वरूप है वही पीड़ित है वही रोग है उसके द्वारा पीड़ित होने के कारण जिस व्यक्ति की जीवा का स्वाद बिगड़ गया है उनको कृष्ण की नाम रूप गुण लीला कथा समधुर नहीं लगती है किंतु उसी का आदर पूर्वक निरंतर सेवन करने से वो फिर पूछिया को देखा करके देखा जाए आकांक्षा वासना कामना सब छोड़ करके देखो कब इसमें वैष्णव सेवा नहीं छोड़ना है हरि कथा नहीं सुनना प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें भक्ति पोषक जिन गुणों को बतलाया गया है तीसरे श्लोक में उसके साथ साथ में संबंध ज्ञान के सहित कृष्णाम आदि अनुशीलन की प्रणाली इस श्लोक में वर्णन किया गया है भाई संबंध के साथ में अनर्थ रहित संबंध सहित दो चीज चाहिए हरिनाम का पेशा में देखना चाहिए अनर्थ रहित हो रहा है और संबंध सहित हो रहा है संबंध रहित मैंने क्या मैं कृष्ण का दास हूं बस हो गया ये साधारण चीज। असाधारण जो संबंध है वो गुरु कृपा से वैष्णव की कृपा से जाना, उस संबंध न भी तो संबंध के लोभ से उसको करना चाहिए, उसी में प्रतिष्ठित करना चाहिए। वो जब तक नहीं होगा तो ये यही प्रणाली है। भक्तिम ठाकुर कहते हैं यही अनकर संबंध सही ऐसे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे भाई ये लो हरे कृष्ण देखो तुम वहां पर क्या हो रहा है। तो ये संबंध सही, संबंध युक्त होकर स्थिर होकर के करना चाहिए। अविद्या पित्त से उत्तप्त रचना के द्वारा कृष्ण की लीला कथाओं और उनके नाम आदि का कीर्तन नहीं हो सकता है। अविद्या पित्त से चित्त चंचल होने पर तुम जितनी भी चेष्टा करेगा वो लीलाओं का न तो चिंतन होगा न संबंध के सहित में नाम होगा। ये संबंध कैसे हो इसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। हमारे गोस्वामी ने संबंध के संबंध में बहुत कुछ लिया, किंतु आदर के साथ में नित्य प्रति सेवन करने से नाम चरित रुचि मिश्री अविद्यारोह को नाश करने में समर्थ हो जाता है। स्वभावतः जी विभु चैतन्य कृष्ण का अंश है, इसलिए प्रत्येक जीवी स्वरूपतः कृष्ण दास है, स्वरूपतः है। तो किंतु यही किसी की थोड़ी सी आभास के रूप में उपलब्धि होने पर यह संबंध ज्ञान, यह संबंध ज्ञान के साथ में आदर पूर्वक यदि नाम किया, जैसे मान लिया कि रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण नाम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके आंख में आंसू की धारा क्यों आती है, हृदय में पुलक रोमांच किस लिए होता है, किस लिए, संबंध के लिए। एक मैया अपने पुत्र का की चिंता करते हुए और बैठी हुई है, आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके। कोई आदमी अपने एक संबंधी आदमी का चिंतन कर देखो जाए, उसी प्रकार से नाम में संबंध ज्ञान के सहित में जो जितना नाम कर करके करेगा उसका अपना पुष्ट होगा। इसलिए अनर्थरहित संबंध सहित नाम तो साधारण रूप में तो जी मात्र कोई माने न माने कृष्णदास को हरि है। इसी कृष्णदास की विस्मृति से जीव अविद्या रूप से ग्रस्त हो गया है, किंतु साधु गुरु वैष्णव की कृपा से सत्संग का सेवन करने से पुनः कृष्ण नाम रूप गुणलीला का स्मरण करने में समर्थ होता है और अपने वो संबंध को फिर से पा जाता है जिस संबंध को भूल गया है। हम लोग को विशेष रूप से हमारा क्या कृष्ण के साथ में संबंध है इसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। जैसे जैसे अपने स्वभाव का संबंध का विकास होगा वैसे वैसे भगवान के नाम चरित्र में रुचि बढ़ेगी। जैसे जैसे कृष्ण के साथ में संबंध, यहाँ पर कृष्ण माने क्या, यहाँ पर वो सभी परिकर इत्यादि साथ से ऐसे संबंध जिसका जितना ही पुष्ट होगा नाम में उसकी उतनी ही रुचि होगी, एक क्षण भी नाम छोड़ने की चेष्टा नहीं होगी, करने की इच्छा नहीं होगी, अपने आप स्फूर्ति होने लगेगी। अविद्या भी अपने आप जितने परिमाण में यह संबंध ज्ञान पुष्ट होगा हरिनाम होगा उतने परिमाण में ये अविद्या भी दूर होती जाएगी। तन्नाम रूप चरिता आदि सुकृत नाम स्मृतो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नएत अखिलाम इत्युपदेश साध। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं जिस समय ये अखिल उपदेशों का सार मैं बतला रहा, इस पर खूब सावधानी के साथ में बार बार पढ़ करके चिंता करते हुए हरिनाम कर किसी के अनुरूप ये सब चीजें जो बतलाए गए अभी सात श्लोक से ये आठवां श्लोक है। जीव इस स्थिति में कब पहुंचा ये मैंने तो 5 मिनट में सब कह दिया, किंतु इस अवस्था में आने के लिए हो सकता है कि 10, 20, 50 जन्म या लाख जन्म भी लग जाए किसी, और किसी को बहुत कम समय भी लग सकता है। तो ये बतला रहे भजन करने की प्रणाली, यह है भजन की प्रणाली, सजियाओं की प्रणाली नहीं है, ये भजन की प्रणाली है। भक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं उनकी प्रणाली क्या है, जब कोई आ गया बस उसको गोपी नाम दे दो और दो कॉपी दे दो और कहो जे तुम गोपी हो गया और तुम राधा कुंड में बैठ करके भजन, तो भजन क्या करते हैं राधा कुंड में भजन करते हैं, जैसे वहां से निकल करके सब आ जाते हैं और इधर उधर बैठ करके भिक्षा मांगते हैं और हरि नाम से अन्य से कोई संबंध नहीं, इसलिए इन चीजों को अच्छे तरह से समझ करके तन नाम रूप, तन नाम रूप माने कृष्ण का नाम रूप चरित आदि लीला इत्यादि सुकृतनानु स्मृत्यो अनुस्मृत्यो क्रमेण रसनाम नियोज, सबसे पहले कीर्तन के पहले श्रवण करना चाहिए, अनु माने अनुगत में श्रवण कर, श्रवण नहीं करेगा हरिनाम नहीं होगा भाई, जो श्रवण करेगा उसी का हरिनाम होगा, उसी का कीर्तन होगा, और जैसा कीर्तन और ये श्रवण होगा उसी को ही स्मरण होगा, दूसरे को नहीं हो सकता है, जो सुनाई नहीं जो कीर्तन ही नहीं किया तो उसका स्मरण क्या होगा, इसलिए लीला स्मरण की तरफ में मत पहले जाओ, अनु अर्थात अनुगत में निरंतर श्रवण करो, श्रवण पुष्ट होने पर कीर्तन होगा, कौन सा नाम तुम्हारे लिए जो प्रिय नाम, कौन सा नाम जिसके जिसका जो प्रिय नाम, किसका क्या प्रिय नाम होगा ये कैसे पता चलेगा, जिसका जैसा संबंध है संबंध पर ये नाम निर्भर करता है, जिसका वात्सल्य का है वो गोपाल इत्यादि कृष्ण के नाम है, ये सब प्रिय होगा, सखाओं का भी सखा के अनुरूप जो नाम है वो सब नाम प्रिय होगा, और जो गोपियों के भावाश्रित संबंध जुड़ते हैं उनको उनके द्वारा उच्चारित जो नाम है और उनसे संबंधित लीलाओं से संबंधित हैं उन नामों का उन्हीं का वो चरित्र श्रवण करने में उसको आनंद होगा, उसी का चिंतन करने में आनंद होगा, उन्हीं के धाम में जाकर के रहने की इच्छा होगी, वात्सल्य रस की भावना है जिसको, वो कहां रहेगा गोकुल महाकुंड में रहेगा, सखर रस वाले हैं नंदगांव है अथवा आमबन इत्यादि ये सब में वृंदावन में भी कुछ रह सकते हैं, वात्सल्य वाले कहां और भी रहेंगे वो नंदगांव में वहां पर भी रहेंगे, और ये लोग कहां रहेंगे जबकि गोकुल की भावना जिनको उसे संबंध है वो जहां भी रहेंगे उसमें वैद्य तब राधा कुंड उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, गिरिराज सबसे श्रेष्ठ है स्थान, इसलिए कह रहे हैं स्मृतियों क्रमेण रसना मनुष्य नियोज्य, रसना और मनसी जीवा को नाम कीर्तन में और मन को भगवान की लीला कथाओं के चिंतन में ये लगाकर, और तिष्ठन ब्रजे ब्रज में अपने भाव और संबंध के अनुकूल स्थानों में रहकर पदानुरागी जनानुगामी उनके जो अनुरागी जन है उनके अनुगत्य में वहां रख करके कालम नए अपने कालों का सदुपयोग करता है, तो यही समस्त उपदेशों का सार है, इसलिए वृंदावन इत्यादि धामों में वैष्णव के अनुगत्य में निरंतर मन के द्वारा कृष्ण लीलाओं की कथाओं का चिंतन करते हुए और मुख से हरिनाम करें, यही समस्त उपदेशों का सार है। नवीन साधकों के मन में प्रश्न हो सकता है, यह प्रश्न हो सकता है नवीन, हम सभी अभी नवीन भी नहीं, नवीन से भी नीचे हैं, कृष्ण नाम चरितादि का अनुशीलन कहां करते, कहां पर हम हमारे नाम करेंगे, कहां पर कीर्तन करें, तो जब उनके लिए सभी कुछ भजन करने के लिए सभी कुछ छोड़ दिए हैं तो वो क्या करेंगे, तो उन स्थान में रहेंगे जहां पर हमारा नाम कीर्तन बढ़े, उत्तम कोटि का हमारा नाम। और वैसे हमारा चिंतन भी उसी प्रकार का उत्तम कोटि का, जहां पर हमको सहायता मिलती है, हम एडवांस कर सके वहीं पर। मान लीजिए वृंदावन में रहते हैं, राधा कुंड में भी रहते हैं, और वैसा सुयोग नहीं है वैष्णव के अनुभक्त का, और श्रवण का भी उतना सुयोग नहीं है। तो वैष्णव संग प्रभावी है ना राधा कुंड प्रभावी है? हमारे समय से किसी उत्तम अधिकारी के लिए तो वो हो सकता है राधा कुंड, किंतु हम जैसे साधकों के लिए, नवीन साधकों के लिए वैष्णव के संग में रहना, जो जिनके अनुशासन में हम रह सकें और निरंतर हरि कथा इत्यादि सुनने को मिल सके, ये संग उचित। और जब अभी उन्नत अधिकारी हो जाएंगे तो वो संग निर्णय करके राधा कुंड वृंदावन कामेवन जहां जहां उसकी इच्छा, जैसे रूप सनातन इत्यादि सड़ गोस्वामी रहते हैं, उनके लिए कोई भी अंकुश नहीं है, किंतु हम लोगों तक के लिए, मध्यम अधिकारी तक के लिए अंकुश, जहां पर शुद्ध रूप में साधु संग मिल सके, हमारी भजन की प्रवृत्ति उन्नत हो सके, संबंध ज्ञान पुष्ट हो सके, अंगत हो सके, ये सब विचार करके हम लोग को जाना चाहिए। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि कहां रह करके हम भजन करें, उसके उत्तर में वो कहते हैं समस्त उपदेशों का सार स्वरूप इन श्लोकों की अवतारणा इसी के लिए की गई है। केवल कृष्ण ही अपनी जगत के प्राणी मात्र के चित्र को आकर्षण करने में समर्थ है। रूढ़ वृत्ति के द्वारा प्रजन सर्वत्र यशोदानंदन के रूप में प्रसिद्ध है, वो यशोदानंदन के रूप में प्रसिद्ध है। इसलिए भक्त मात्र को अपनी जीवा को कृष्ण नाम के नाम रूप गुण लीला इत्यादि कथाओं में कीर्तन में लगाओ। कीर्तन माने क्या? कीर्तन माने ये मत समझो कि केवल करताल और मृदंग के सहारे जो कीर्तन करते हैं वही कीर्तन है, ये मत समझो। किस प्रकार से जीवा में भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादियों का स्पर्श हो जाना ही ये। इसलिए कीर्तन के लिए सबसे श्रेष्ठ किसको बताया गया? सुखदेव गोस्वामी। बहुत से ऐसे लोग हैं भाग मृदंग इत्यादि के साथ में शुद्ध रूप से सुस्वर से कर सकते हैं, किंतु भक्ति लेश भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, अनर्थ इत्यादि भरे पड़े हैं। इसलिए ये कीर्तन हो चाहे वो कीर्तन हो, जीवा के स्पर्श मात्र से ही उच्चारण से वो कीर्तन होता है। तो इसलिए सब समय जो हरि नाम कीर्तन करता है, मृदंग पर भी कीर्तन करता है और ऐसे भी कीर्तन करता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कर करके सब लोगों को उन्नत बनाता है, तो ये सब कीर्तन। इसलिए अपनी जीवा पर नाम रूप गुण लीला इत्यादि का कीर्तन करने में मन को उनके स्मरण में लगाकर ब्रजमंडल में ही बास करें। रूप गोस्वामी जी कीर्तन करते थे कि नहीं? हरिदास ठाकुर जी मृदंग पर करते थे कि नहीं? कोई जरूरी नहीं। इसलिए ऐसे कीर्तन पर हम लोगों को चलना चाहिए, चाहे कीर्तन के रूप में हो चाहे इस रूप में हो, ब्रजमंडल में ही बास करे और भक्तों के अनुगत्य में रहे। भक्तों का अनुगत्य माने क्या? खाएंगे पिएंगे उनके साथ, परिक्रमा करेंगे उनके साथ, और सब करेंगे वो सब जितना निर्वाह के लिए उनके साथ है, किंतु करेंगे अपने मन से जो कुछ करेंगे, तब भाई संग ने उनका आचार विचार लेकर के ही चलना ही अंत। वो जैसा उनका जीवन है वैसे अनुसरण करने की चेष्टा करो, वो जैसा कहते हैं वो जब अनुसरण नहीं कर सकते तो वो जैसा कहते हैं अंततः वैसा करो। इसलिए भक्तों के अनुगत्य में होना चाहिए। अनुगत्य मैंने क्या? अनुगमन गत्य है ना, गत्य मैंने क्या? गम धातु से चलो, वैसे ही मन के द्वारा वैसे चलो, आत्मा के द्वारा चलो, शरीर के द्वारा चलो, उसी प्रकार से चलो।
कैसे भक्तों को अनुगत्य में चले? वैधि और आगानुगा दो प्रकार की भक्ति होती है। इन दो प्रकार की भक्तियों के साधक भक्त भी दो प्रकार के होते हैं, वैधि भक्ति के चलने वाले और रागानुगा भक्ति वाले। उनमें हम किनका अनुगत्य करेंगे? इनमें से रागानुगया रागानुगीय भक्तों का ही अनुगमन अभीष्ट है। क्यों क्यों अभीष्ट है? अंत में ये बतलाएंगे, इस श्लोक के बाद ही से ये बतलाना आरम्भ करें। ये सब रागानुगा के लिए है। प्रारंभ से जो ये उपदेश है, पहले मालूम होता है ये वैधि, किंतु वैधि इसमें एक भी श्लोक नहीं, प्रारंभ से ही ये मनशिक्षा इत्यादि को वैधि भक्ति मत समझना, प्रति भक्ति जैसा लगता है। रागानुगा भक्ति भी देखने में वैधि जैसे ही लगती है और वो लोग वैधि जैसे ही करते हैं, किंतु भावना का अंतर होता है। इसलिए रागानुगा भक्ति जो है उनमें भी यदि अधिक उन्नत यदि वैष्णव मिल जाए तो और अच्छा, किंतु और अधिक मिल जाएंगे उत्तम तो उनको हम अनुगमन नहीं कर सकते, संभव नहीं साधारण लोगों के। इसलिए मध्यम अधिकारी में रहने वाले जो भक्त हैं, जो आचरण करते हैं, जो शासन भी करते हैं, उत्तम अधिकारी शासन नहीं करेंगे, उनको फुर्सत नहीं है। देखने में तो मालूम होता है कुछ नहीं कर रहे कि तो उनको फुर्सत नहीं, बड़ी तीव्र गति से वो भजन करते हैं और उनका आचरण भी हम लोगों के द्वारा संभव नहीं। सुखदेव गोस्वामी का आचरण हम लोगों से संभव होगा? ये नंगे चल रहे हैं, कोई दिया नहीं, हम मांग ही नहीं रहे हैं कुछ, उनको जरूरत है उनका, वो चित्त यहां पर है ही नहीं है, शरीर है उनका मन। ये हमारे नित्यानंद प्रभु जी है, ये आचरण हम लोग रूप रघुनाथ का ही आचरण नहीं कर सकते हैं साधारण में तो और लोग। इसलिए रागानुगा भक्ति जो मध्यम अधिकारी हो, जो हमारे अधिकार के निकट में कुछ हो तो उनका, किंतु शुद्ध वैष्णव होना चाहिए, इनमें से होना चाहिए। पदानुरागी जनानुगामी अनुरागी हो, अनुराग उनको हो, ऐसे करने से ब्रज लीला के अंतरंग संगी नर लीलाकारी ब्रजेंद्र नंदन के अंतरंग लीला परिकरों का अनुगमन करने वाले रसिक गुरुजनों के अनुगत रह करके कृष्ण भक्ति के अनुशीलन करने की बात करते हैं। क्या बतलाया? नर लीला करने वाले ब्रजेंद्र नंदन के अंतरंग लीला परिकर कौन है? रूप सनातन रूप रघुनाथ इत्यादि जो शामिल है, उनका अनुगमन करने वाले जो उनका अनुगमन जो करते हैं वो रागानुगा रूप सनातन जी रघुनाथ दास गोस्वामी, ये रागानुगा नहीं है, ये क्या है? रागात्मिक। उनका अनुगमन करने वाले जो अभिसिद्ध नहीं हुए हैं वो रागानुगा है, उन लोगों का हम जो सिद्ध है उनका करना पड़ा था, उसके हम स्पर्श उनको नहीं कर सकते, इसलिए उनका अनुगमन करते हुए ब्रज में रह करके निरंतर कृष्णाम और ये सब करें। कहते हैं मन को संबंध ज्ञान में पुष्ट कर, विषयों से हटाकर और संबंध ज्ञान में पुष्ट कर ब्रज में निवास करते हुए ब्रजरस ब्रजरस और रसिक ब्रजरज हो गया ब्रजरस और रसिकों का अनुगमन पूर्वक सारा जीवन यहीं पर बिताए। यदि किसी प्रकार की लालसा होगी तब तो ब्रज से बाहर जाएगा, आ कोई लालसा ही नहीं है, अभी हम लोग लौट जाएंगे। क्यों लौट जाएंगे? बहुत काम घर में पड़ा। अच्छा ब्रह्मचारी लोग कैसे लौट जाएंगे? बहुत काम है। क्या काम है? इसका अतिरिक्त और कोई काम है? कभी नहीं रह सकते। नवद्वीप में रहे, नवद्वीप में नहीं रहेंगे, इसलिए ये चंचलता हम लोगों को गड़बड़ कर देती है। इसमें भी एक विशेष बात है, भगवान की विशेष कृपा या वैष्णव की विशेष कृपा होने से ही ऐसा संभव, अपनी चेष्टा से होना बड़ा भारी कठिन। यदि भजन की तीव्र ऐसी लालसा और एकांतिक भजन की इच्छा रहेगी तो भगवान उसके लिए व्यवस्था कर देते हैं, जाओ चिर जीवन तुम वृंदावन में रहो, नवदीप धाम में रह करके भजन करो, उसके लिए अनुकूल परिस्थिति कर देते हैं, अन्यथा अनुकूल परिस्थिति में देखते हैं कि ये करेगा तो नहीं, तो हम कृपा करते हैं, बेकार का क्यों करें, भस्म में घी डालता है इसलिए नहीं करते, और उन लोगों के लिए एकदम अपने आप व्यवस्था कर देते हैं, सब अनुकूल व्यवस्था हो जाए। एक लड़की थी पुरी में, तो वो भजन की कुछ लालसा, तो उसने सोचा जब हम भजन करें वृंदावन, घर छोड़ दिया और वृंदावन में चली गई, ऐसे ही बोल रही है, अभी छोटी सी 12-13 वर्ष की और बड़ी सुंदर भी, तो कहीं जा करके वो सुन रही थी, अकेले में बहुत डर रहती, तो किसी ने देखा तो कहा भाई तू कहाँ रहती है, तो उसने बताया अच्छा चलो हमारे घर में रह करके भजन, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं, और उसके लिए घर की व्यवस्था करते, उसके माता पिता भी बन गए, जहां तुम्हारे माता हैं हम तुम्हारे पिता हैं, और खाना कपड़ा लत्ता सब दे करके वृंदावन में उसको भजन करने की सब व्यवस्था। यदि वो गड़बड़ नहीं करेगी तो सारा जीवन तक, तब लड़कों के लिए क्या बात, इसलिए व्यवस्था वो जरूर करते हैं। यदि हमारे अंदर में एकांत अभिलाषा इतना तक तो जो व्यवस्था दे करके किया है तो आगे भी दे, किंतु हम देखते हैं ये सब हम लोगों का दोष के वजह से ये सब गड़बड़ है, कामना वासना करने लगते हैं, रुपया पैसा बटोरने लगते हैं, इधर उधर करने लगते हैं, लोगों की लालसा होती है, फिर वहां से बस चुप हो जाते हैं। इसलिए भजन की लालसा एकांतिक रूप में आप भगवान व्यवस्था ना करें ये कभी हो नहीं सकता है। भगवान तो कहते हैं ना मैं किसी प्रकार से ये खोज रहा था कि कैसे भी छल बहाना करके भी तुमको ले, तुमको छल बहाना करने का भी अवकाश नहीं। इसलिए हम लोगों को अभी तक जो मिला है ये कैसे मिला है भगवान के कृपा, हमने कुछ त्याग करने की संकल्प किया जी भगवान का यहां तक किया, किंतु देखते हैं कि हमारी बात नहीं मानता है तो वो छोड़ देते हैं, छोड़ करके करो तुम इच्छा से। साधकों के जीवन में भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं है प्रभुपाद जी, साधकों जीवन पहले पहले श्रवण की दशा होती है, इसी को कहते हैं श्रवण, श्रवण की दशा ना आए तो वो असब दशाएं नहीं आई, ये सब भजन के क्रम है, पद्धति है। इस दशा में कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण का की कथा श्रवण करते करते परिपाक अवस्था में वर्ण दशा आती है, पहले हुआ श्रवण दशा, सुनो सब पढ़ो अच्छी तरह से सुनो, क्या सुनना है संबंध ज्ञान सुनो, भगवान की लीला कथाओं को सुनो, उसमें से अपना एक संबंध लीला कथा के साथ में अपना जोड़ लो, ये कैसे जोड़े सेवा करो, उसके लिए प्रयास करो, देखो जैसे होता है जरूर हो जाएगा। तो श्रवण करते करते वर्ण दशा होगी, इस समय श्रवण किए गए विषयों का कीर्तन होने लगता है और उसको वर्ण कर लेता है, अपना अपना संबंध कायम करके और सब उसे जोड़ लेता है, वो अपने आप उपस्थित हो जाता है, तो ये वर्ण दशा अपने हृदयस्थित भाव के साथ में, अपने हृदय में कौन सा अवस्थित भाव है, शांत दास बासल्य सप्त और मधुर में से कोई एक, उन भावों के साथ में कीर्तन करें। विवाह हो रहा है तो कौन सा कीर्तन गान करती हैं महिलाएं, विवाह का शिव पार्वती राम सीता का कृष्ण और राधा इत्यादि का रुक्मिणी का कीर्तन करती हैं, तो उस समय में दूसरा कोई कीर्तन मरने के समय का कीर्तन करने लगा होगा, जब जैसा है वैसा ही कीर्तन करना चाहिए अनुरूप, तो हृदय के भाव के अनुसार में जब कीर्तन होने लगता है तो इसको कहते हैं स्मरण दशा, पहला श्रवण वरण और तब ये हो गया स्मरण दशा, अपने आप कंटिन्यूअस धारा में वो स्मरण होने लग जाएगा। स्मरण भी पांच प्रकार की स्थितियां हैं, स्मरण धारणा ध्यान अनुस्मृति और समाधि, विक्षेप युक्त चिंतन को स्मरण करते हैं कहते हैं, विक्षेप में जैसे अभी हम लोग कर अभी हरे कृष्ण क्या विक्षेप आ गया, चिंतन कर रहे हैं इसी में कुछ विक्षेप आ गया, कौन सा भैया किसी ने कुछ टोका पोका नहीं, मन में ही वो सब भावना इधर के इधर होने लगी। इसको कहते हैं विक्षेप। अविक्षिप्त अवस्था स्मरण को धारणा करता है। जब चित्त विक्षिप्त नहीं होता है, निष्ठा हो गई और उसे भी ऊपर बढ़ने लग गया है, तब अब चित्त इधर उधर विचलित कुछ समय के लिए नहीं होता है, इस अविक्षिप्त चित्त के स्मरण को धारणा करते, अब धारण करने लगा। चिंतनीय विषय की सर्वांग भावना ही ध्यान है, सर्वांग रूप में एकदम ध्यान है। अब मन कहीं इधर उधर नहीं जाता, जितनी इच्छा उतना बैठ करके हरिनाम करता है, चिंतन करता है, लीलाओं का स्मरण करता है, तो इसको धारणा करते हैं। चिंतनीय विषय की सर्वांग भावना ही ध्यान। क्या भावना? रघुनाथ दास को स्वामी जी बैठे हुए हैं और वो ध्यान कर रहे हैं, कहां ध्यान कर रहे थे लीला का, और इतने में एक आदमी ने मट्ठा दे दिया वो बड़े दोने में, वो भावना कर रहे थे क्या? कोई सखी कृष्ण को सखी स्थली से बहका कर फुसला कर और ला रही है राधा कुंड, ये वो देख रहे हैं और इसी में एकदम समाविष्ट है, समाधि में है वो, और उसी समय आता है, ओ बाबा जी, ओ महात्मा जी, बाबा जी, अरे ये मट्ठा ले आया हूं। वो तो नहीं जानता है जी वो क्या कर रहे हैं, अरे मट्ठा लो मैं जा रहा हूं, मुझको जरूरत है जाने के लिए। वो समझे ये बेकार का बैठा हुआ है फालतू, और हमको बहुत काम है, जाना है, ये काम करना। उसने समझा नहीं, ऐसे ऐसे शरीर को हिला करके कहा, अरे बाबा जी उठिए 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 हम जा रहे हैं ये मट्ठा ले। तो उन्होंने देखा कहां से ले आया और उधर चिंता कर रहे हैं वो, बस जहां सखी स्थली का नाम सुना और कहां लचिया लेकर के परस्पर, एक तो उनका ध्यान भंग हो गया, दूसरी बात वो मट्ठा लाया कहां से, जहां से वो कृष्ण को बहका करके ला रही है और वहीं पर वो लेकर के जा रहा है, बस लचिया मारने दौड़े। वो समझा नहीं कुछ, उनका बाहरी और भीतरी दोनों उनका क्रोध हो गया दोनों चीजें से। इसलिए कहते हैं चिंतनीय विषय की सर्वांग भावना ही ध्यान है। सब समय ध्यान का होना ही, ध्यान 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, और जब यही ध्यान कैसा होगा, सब समय अपने आप ध्यान में बैठा है, इधर उधर बात कर और ध्यान उधर हो गया, लीला की तरफ नहीं चला। तो यह अनुस्मृति हुई, अनुस्मृति अनुस्मरण अनुमान निरंतर स्मृति होने लगी, बाधा रहित निरंतर ध्यान को ही समाधि कहते हैं। अब बाधा भी नहीं रही, कोई विक्षिप्त भी नहीं रहा चित्त, और उस ध्यान को समाधि सम भी, अब उसकी बुद्धि एकदम अपने उपास्य जो परिकर और कृष्ण है उसके बराबर आ गई, और उसमें एकदम ऐसा लग गया जो नीचे उतरने का बात नहीं, ये समाधि है। अब स्मरण दशा के अनंतर, ऐसे स्मरण दशा के अनंतर में ये पांचों जब चली गई तो आपन दशा होती है। इसमें एक और चीज समझो, एक सहज समाधि होती है इनके अतिरिक्त, एक तो समाधि हुई ध्यान बंद करके, और एक सहज समाधि क्या, चल रहे हैं फिर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं और समाधि लगी हुई है, ये गोपियों के लिए समझो, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि के लिए भी, हमारे गोस्वामियों के लिए भी, चल रहे हैं बातचीत कर रहे हैं भोजन भी कर रहे हैं किंतु उनका चित्त न तो है यहां न कुछ है, उनका चित्त कहां है, वहां उस लीला में है इस दशा में। अच्छा, इसके बाद में पहला हुआ श्रवण, तब हुआ वरण, इसके बाद में
स्मरण,
और उसके बाद में ये आपन दशा। आपन दशा माने क्या, इस दशा में साधक को अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि होती है, मैं कौन हूं रियल, अभी तक तो वो कुछ भावना कर रहा था, अब इस समय में एकदम शुद्ध रूप में उस अवस्था में हमारा कृष्ण के साथ में गोप गोपियों के साथ में हमारा क्या संबंध है, अपने स्वरूप की स्फूर्ति उस समय में होती उपलब्धि होती है, और इसके बाद में होती है संपत्ति दशा। संपत्ति दशा में वस्तु सिद्धि, यहां पर हो गया स्वरूप सिद्धि, और वहां हो गया क्या वस्तु सिद्धि, एकदम पहुंच गया। ये है भजन का क्रम, क्रम वो क्या कहते हैं
प्रणाली, सिद्ध प्रणाली,
वो सिद्ध प्रणाली है, और ये क्या प्रणाली कहते हैं, ये सब प्रणाली कर बदमाश सब लोग उनको सिद्ध प्रणाली, ये सिद्ध प्रणाली है, इस प्रणाली से चल, उनके बहकाओं में मत आना कभी लोग, जो मूर्ख होते हैं जिनको कोई भी विचार नहीं है वो उनके विचारों में भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए इस प्रणाली के द्वारा हम कहां पर हैं, किस अवस्था में, इसको विचार करो। वैध भक्त, वैध भक्त अपनी अनन्य कामनाओं को छोड़कर के शास्त्र, सदगुरु, अशुद्ध वैष्णव के उपदेश अनुसार में भजन करने पर उन्हें भजन में रुचि होती है। क्या कहा, हम लोग जो हैं वैध भक्त वाले, सब कामनाओं को पहले छोड़ो, कोई कामना रखेगा तो गड़बड़ होगा, कामना को छोड़ करके भजन करना चाहिए, को छोड़ करके शास्त्र, सदगुरु, अशुद्ध वैष्णव के उपदेशन, तीन क्या बतलाए, शास्त्र में हम गड़बड़ी कर सकते हैं, नहीं समझ नहीं सकते, सदगुरु भी कभी असदगुरु हो सकता है, इसलिए शास्त्र उसका कंट्रोल करेगा। अशुद्ध वैष्णव, यदि वैष्णव कहीं गुरु यदि गड़बड़ कर दिया ना, तो शास्त्र और वैष्णव मिलकर के उसको ठीक करेंगे, और यदि शास्त्र समझ में नहीं आता है, उल्टा पुल्टा हो जाए, तो गुरु और वैष्णव मिलकर के
समझा देंगे
उसको, ठीक कर देंगे। जिधर में
मेजोरिटी
है उसको लेकर के चलो भाई भजन करना है, तो नहीं तो बहुत से ऐसे भी हैं जो भजन वाले गुरु नहीं है, तो हमने किसी प्रकार से ले लिया उनसे हरिनाम दीक्षा, तो कहेंगे ये शास्त्र भी नहीं है, वैष्णव भी नहीं है, बस वो जाएंगे चित्पा नरक में जाएंगे। आजकल बहुत से जगहों में ऐसे होता है, और जिधर में वो मेजोरिटी है उसको लेकर के चलो भजन कर रहा है। शुद्ध वैष्णव, शुद्ध शास्त्र और शुद्ध गुरु एक चीज है, ये समझो।
गणतंत्र है,
गणतंत्र, गणतंत्र हमारा शास्त्र ही गणतंत्र है, इसको ये लोग ग्रहण करते हैं। मान लिया कि भजन अनुभवी 20 वैष्णव एक साथ में, और कहते हैं कि ये गुरु सदगुरु नहीं है, और एक गुरु है वो कहते हैं मैं सदगुरु हूं, ये सब वैष्णव है, क्या करोगे,
शास्त्र विचार से देना पड़ेगा,
शास्त्र विचार लो और फिर विचार करके इनको देखो, और शास्त्र का विचार नहीं है तो मारो, इसलिए ये सब विचार करना पड़ेगा। जिनको विचार का असमर्थ नहीं है वो कनिष्ठ अधिकारी है, अभी भजन के उपयुक्त नहीं है, मध्यम अधिकारी का आने पर ये सब विचार उपस्थित होगा, वैष्णव अवैष्णव वो पहचानेगा, वैष्णव चिनिया आदर करिया,
आदर करिए,
इसलिए ये सब याद रखना, भजन में मध्यम अधिकारी, यदि कनिष्ठ अधिकारी होता तो होते सब, तो ये सब कहने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है, ये जो भजन परायण है उन लोगों के लिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो भजन में रुचि नहीं होगी, इसलिए शास्त्र, सदगुरु और शुद्ध वैष्णव, सदगुरु कहा और शुद्ध वैष्णव कहा और सत शास्त्र कहा, तीनों को ये ठीक है, ये तीनों एक तात्पर्य पर है, आर ना करी है मन आशा, इनको लेकर के चलो हम भजन करें, तब ऐसा करने से भजन में भाई रुचि होगी, नहीं तो रुचि नहीं होगी। रुचि उत्पन्न होने पर वे वैध मार्ग को छोड़ करके रागानुगा भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं, ये नियम है। इससे सारस्व की राग परमावेष्टिता भवे तन्मयीजा भवे भक्ति शास्त्र रागात्मकोदिता है। इष्टे सारस्व की राग स्वभाव की इष्ट में अनुराग हो, और वही राग परम आवेशता आवेश के साथ में हो, तथा आवेश के साथ में जो भक्ति कहा जाता है होती है उसी को रागात्मिक कहा जाता है, यह ब्रजवासियों में ही संभव है, और उसका जो अनुगमन करते हैं उस चीज को लाने के लिए, राग को आने के लिए, उसको कहते हैं रागानुगा। रागानुगा और रागात्मिका एक नहीं, रागमयी भक्ति है रागात्मिका नाम, जो रागमयी भक्ति है स्वाभाविक रूप में ब्रजवासियों को कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक अनुरागमयी भक्ति है इसको रागमयी कहते हैं, और कहां सुनी लुब्ध है कौनो भाग्यमान, उसको सुन करके कोई भाग्यवान लुप्त हो। जब तक लुप्त नहीं होता है तब तक वैदिक भक्ति करो, आगे मत जाओ, और जब कुछ लोग होना आरंभ हुआ तो आगे बढ़ो, वो लोग ही बढ़ा देगा। लोभ ब्रजवासी भावे करे अनुगति, लोभ से ब्रजवासियों के भावों का अनुगमन यदि वो करता है, शास्त्र युक्ति नहीं माने, रागानुगात प्रवृत्ति शास्त्र की युक्तियों को नहीं मानता है, रागानुगात की तुच्छ। जैसे गोपियों के लिए शास्त्रों का अनुबंध या अंकुश उन पर लागू नहीं होता, पति की एकमात्र सेवा करो उनके लिए लागू नहीं होता, उसको श्रृंखला को वो तोड़ देगी। इसी तरह से रागानुगा की प्रवृत्ति यदि जन्म जाएगी हृदय में तो उसका विधि का अंकुश जो है उसका नहीं रहेगा, करेगा किंतु अंकुश पर यही करना है तुमको ये नहीं करेगा, वो कब कैसा अनुराग के अनुसार में करेगा उसके देख कर देगा। बाह्य अभ्यंतर यह दुई तो साधन बाह्य साधक देह करी समन कीर्तन मन निज सिद्ध देह करी आभावन रात्रि दिन करे प्रजे कृष्ण। ये प्रभुपाद का विचार है। लोग कहते हैं प्रभुपाद जी रागानुगा भक्ति की बात नहीं जानते थे, वो सब कारण
नहीं खाते
कहते नहीं थे, जानते ही नहीं थे, इसलिए छोड़ करके नवदीप का बाबा जी का आश्रय लिया और वो दोनों मरे विष खा करके हजम मर गए। दोनों माने कितने लोग मर गए, सेवा साधक रूपे न सिद्ध रूपे न चात्र ही, यह रागानुगा के लिए बतला रहे। सेवा मनी मन में जो करेगा वो साधक रूप से और सिद्ध रूप से, साधक रूप में रूप सनातन हमारे गोस्वामी लोगों ने भक्त विनोद ठाकुर प्रभुपाद इत्यादि ने जो साधन रूप में जो किया है शरीर के द्वारा वो सब वैसा बाह्य शरीर से, और अंतर अंतर से जैसा वो लोग अंतर से करते थे भजन वैसा करेगा। सेवा साधक रूपे न सिद्ध रूपे न चात्र ही तद्भाव लिप्सना कार्या ब्रजलोकानुसार, ब्रजलोकानुसार ब्रजलोक के अनुसार में, ब्रजलोक यहाँ पर कौन है, रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि इनके अनुसार में करें, एकादशी का पालन इत्यादि भी और सब जो विधियां जैसा हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने पालन करके दिखाया वैसे हम लोगों को पालन करें। ऊपर से और भीतर से वो जैसे मंजरी भाव इत्यादि का करते थे वैसे उन लोगों के लिए जिनको लोभ उत्पन्न हुआ है वो, आज इनको लोभ उत्पन्न नहीं हुआ अभी प्रतीक्षा करो। निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ट पाछे तो ला गया निरंतर सेवा करे अंतर मन हैया, कृष्ण में स्मरण जनन जनन चाष्ट प्रेष्टम निज समीहितम तत्त कथारताश्चासौ कुरिया वासम दास सख्य पित्रादि प्रेयशील गण इनका अनुगमन करते हुए भजन कर। छोटे में ये सब कुछ भजन की जितनी प्रणाली थी ये सिद्ध प्रणाली है, इस सिद्ध प्रणाली को लेकर के हम लोग चलने की चेष्टा करेंगे अपने 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 योग्यता के आधार पर। उसको करें कृष्ण में स्मरण, कृष्ण का स्मरण करो और उनकी अपेक्षा भी स्मरण किसको करो, जनन चरण उनके जो जन है, कौन जन है, दास सख वाले जिसको जिसमें निष्ठा है उसे के अनुसार उनका स्मरण करो। निज समय हितम मैंने कहा अपने भाव के अनुरूप जिसका जैसा भाव है,
पाछे माने
निजाधीष्ट
कृष्ण पृष्ठ पाछे तो लगे
पाछे माने अनुगमन अनुगमन वो जैसा करते हैं वो लोग ठीक उसी रूप में अपने भावना के साथ में चलना चाहिए। निज अभीष्ट कृष्ण प्रेष्ट, प्रेष्ट माने होते सखा बात्सल्य वाले नंद बाबा जसोदा और गोपी गांव ये प्रेष्ट हुए, उनके पाछे माने उनके अनुगमन समय एकदम तब तक कथा रताश चौसौ और उनके भावना के अनुरूप में उन प्रेष्टों से कृष्ण की जो लीलाएं हैं कथाएं हैं उन्हीं का निरंतर चिंतन करते हुए ब्रज में सदा रहना चाहिए। सारा आप बतला रहे हैं अपने भाव के अनुसार में प्रियतम कृष्ण का एवं अपने भावानुरूप कृष्ण के भक्तों का चरण करता हुआ अपने भगवान कृष्ण के ब्रजलीला संबंधी नामों और लीला कथाओं में संलग्न होकर के भक्त मात्र को ब्रजमंडल में ही निवास करना चाहिए। ब्रजमंडल माने यहाँ पर नवदीप भी समझ लेना, वो पूरी भी समझ सकते हैं, यहाँ पर जिसको सुविधा है। गंभीरा में बल्कि नहीं करो, वो सतासन में रहो और वहीं पर रह करके सत आसन लगा करके वहीं पर बैठ करके
सत आसन
शांत रस वालों को वो व्यक्ति परेशान गयी कदम इत्यादि के अनुगत होकर के करे। शांत वाले जो है तो वो लोग क्या करेंगे, वो वित्र विषाण वेणु कदम और विषाण इत्यादि का अनुगत होकर के, बंशी का अनुगत होकर के, जमुना पुलिन का अनुगत होकर के, वहां के वृक्ष स्थावर जंगम उनका भी करते हुए रहे। दास वालों को रक्त पवित्र और दासों के सख वालों को बलदेव सीदामा सुदाम इत्यादि के अनुगत होकर, यहाँ पर सुबल इत्यादि क्यों नहीं दिया,
प्रिय नर्मो सखा
इसलिए नहीं दिया। वात्सल्य रस वालों को नंद यशोदा आदि के और श्रृंगार रस वालों को ललिता विशाखा इत्यादि के अंगत होकर के भाव संबंधी उन्हीं की कथाओं में निमग्न होकर ब्रजमंडल में निवास करना चाहिए। श्री राधा कृष्ण के भजन के लिए ब्रजमंडल से बढ़कर के कोई स्थान नहीं है, इसलिए ब्रह्मा एवं उद्धव जैसे श्रेष्ठ भक्त भी ब्रज में पूर्णता जन्म लेकर के निवास करने की प्रार्थना करते हैं, जैसे कोई डिस्टर्ब न करे, इसलिए लता गुल्म होकर के कोई भी उनको तंग नहीं करेगा। और मनुष्य के रूप में रहेगा तो साधन भजन नहीं लोग करने देंगे, बाबा बाबा करते हुए पहुंच जाएंगे और उनका सब समय नष्ट। सर्वश्रेष्ठतम भजन स्थान कौन सा है, कितना बन गया
सत्तदश
बैकुंठा जनितो बरा मधुपुर। जनितो माने क्या, बैकुंठा जनितो जनितो माने जन्म से, यहाँ पर जन्म हुआ कहा मधुपुरी में, कौन कह रहा है ये रूप गोस्वामी। तथा की रासोत्सव वृंदारण्य, रासोत्सव के कारण वृंदावन, और उससे भी तत्प्राप्ति उदारपाणी रमण तत्प्राप्ति गोवर्धन, निरंकुश भाव से वहां पर स्वच्छंद गति से गोवर्धन में दोनों का परस्पर विलास हो रहा है, इस कारण से गोवर्धन श्रेष्ठ है। और राधा कुंड में हाथी, इससे भी राधा कुंड गोकुल पते प्रेमामृता प्लावना, प्रेम के प्रेम अमृत के प्लावन से गम्य से के कारण तो वहां पर वो श्रेष्ठ है राधा कुंड श्याम कुंड। इसलिए कौन सा बुद्धिमान पुरुष होगा जो इन सबको छोड़कर के वृंदावन में निवास न करेगा, गिरी के तट पर, गोवर्धन के तट पर, राधा कुंड में कौन ही ऐसा होगा जो उदास हो, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ बताया। ब्रज में भी कहां निवास किया गया, इसके उत्तर में स्पष्ट बतला रहे हैं, मथुरा में कृष्ण का जन्म होने के कारण मथुरा ऐश्वर्य पूर्ण बैकुंठ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। उस मथुरा मंडल में भी रासोत्सव, यहाँ पर साधारण रूप में कहा गया है, जन्म तो उनका गोकुल महाबन में हुआ, इसलिए रासोत्सव होने के कारण वृंदावन श्रेष्ठ है। वृंदावन में भी कृष्ण की स्वच्छंद विहार स्थली होने के कारण अथवा कृष्ण के कर कमलों में क्रीड़ा करने के हेतु गोवर्धन श्रेष्ठ है। इस गोवर्धन में भी गोकुल चंद्र के, गोकुल चंद्र माने क्या, गोकुल में रहने वाले है ना, नहीं नहीं, गोकुल चंद्र का इसका अर्थ ऐसा लगाओ गो गोप गोपी के जो चंद्र है, अन्य तो वो गोकुल स्थान रहता गड़बड़ हो जाए, वैसा मत करो। और गोकुल उसको कहते हैं जहां पर के कृष्ण रहते हैं, इनके साथ में महाबल भी गोकुल है, नंदबल भी गोकुल है, समस्त उनकी लीला स्थलियां ही गोकुल है उस रूप में। इसमें भी गोवर्धन में भी गोकुल चंद्र के राधिका विषयक प्रेमामृत में स्नान करने वाले स्नान कराने वाले प्रेमामृता प्लावना उस प्रेम से स्नान करा देंगे अभिषेक करा देंगे कौन राधा कुंड। इसलिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। श्री राधा कुंड श्रीमती विश्वभानु नंदिनी राधिका के समान ही कृष्ण के अत्यंत प्यारे हैं ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। जब ऊपर में कहे गए सभी धाम कृष्ण के लीला के फल हैं किंतु फिर भी राधा कुंड स्वरूप शक्ति की स्वभाव की लीला की पराकाष्ठा इसमें प्रकाश करने वाले होने के कारण सर्वश्रेष्ठ है। आज यही तक रहे कल उसको समाप्त करेंगे। अब कितने दो ठीक आ जाओ मंचा कल तक प्रवेश कृपा सिंधु अति कामना पाऊ।